भगवान भगवान राम जंगल में गए थे तो बहुत से वहां पर ऋषि मुनि लोग थे जो भगवान की आराधना ताश के भाव से करते थे, परंतु जब उन लोगों ने देखा कि सीता जी का भाव भगवान के प्रति माधुर्य रस का है तो उन ऋषि मुनियों के भी मन में यह बात आई कि हम लोग भी भगवान की आराधना माधुर्य भाव से करें, कांता भाव से करें। तो भगवान राम से प्रार्थना करने लगे कि हम लोगों को भी दुबई के भक्त वहां अभी बिजनेस और बंद। भगवान से प्रार्थना की, भगवान राम से, भगवान राम ने कहा था कि इस जन्म में तो मैं आप लोगों को पत्नी रूप से स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, परंतु मैं पुनः दैवश्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में आऊंगा तो उस समय आप लोगों को मैं अपनी पत्नी रूप में, कांता रूप में मैं स्वीकार करूंगा। उसी समय से ऋषि मुनि लोग थे वे भजन में लग गए, लाखों वर्षों तक भगवान के भजन में लगे रहे, तपस्या किए। और जब भगवान का यहाँ अवतार हुआ, भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि में आए तो वे दंडकारण्य के ऋषि भी गोप बालिका के रूप में यहाँ पर सबने जन्म लिया था। और दंडकारण्य के जो ऋषि थे, जो गोप बालिका बने थे, उन्हीं गोप कन्याओं ने कात्यायनी देवी की पूजा की थी। वो जो गोपियां थी, चार पांच वर्ष का उनका उम्र था और वे निरंतर उनके मन में ऐसा भाव आता था कि भगवान कृष्ण हम लोगों को पति रूप में प्राप्त हो, लेकिन वह तो संभव नहीं था उनके प्रयास से। भगवान का भी उम्र बहुत कम था, 7 वर्ष के अवस्था में भगवान थे, तो उस समय में विवाह का कोई प्रश्न नहीं उठता है। कृष्ण का विवाह का समय नहीं हुआ था और इन लोगों का भी उम्र नहीं हुआ था, इसीलिए ये बड़े चिंतित रहती थी, एक दूसरे से बातें करती रहती थी, रोती रहती थी, कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त होना चाहिए, हम लोगों का विवाह कृष्ण से होना चाहिए। एक दिन वृंदावन के किसी विशेष स्थान में सभी वो गोपियां रो रही थी बैठकर, सभी गोप कन्याएं। उसी समय वृंदा देवी आ गई, योग माया आ गई, सौरमासी जी आ गई, वृंदा देवी कहिए। वृंदा देवी ने उन लोगों को सांत्वना दिया और वृंदा देवी ने उन लोगों ने कहा कि मेरे पास एक सिद्ध विद्या है, मैं कुछ विद्या जानता हूँ, यदि उसके द्वारा आप लोग कात्यायनी देवी की आराधना करोगी, पूजा करोगी, तो कात्यायनी देवी केवल 1 महीने में खुश हो जाएंगी और 1 महीना के तपस्या करने से ही आप लोगों को कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो उन गोप कन्याओं को यह बहुत अच्छी बात लगी। उसी समय वृंदा देवी ने यह भी बता दिया कि यह कात्यायनी देवी है, भगवान की एक विशिष्ट शक्ति है, अतरंगा शक्ति है, प्लेजर पोटेंसी है, उसका अंश है। इस शक्ति की उपासना प्रथम बार कात्यायन नाम के एक ऋषि किए थे, कात्यायन नाम के एक महात्मा थे, उन्होंने भक्ति किया, उनको सिद्धि मिली थी, इसीलिए इस शक्ति को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायन ऋषि ने भजन किया था, इसीलिए इस शक्ति का नाम है कात्यायनी देवी। तो उन गोप कन्याओं को बहुत अच्छी बात यह लगी, वृंदा देवी के आदेश से और आशीर्वाद से उन गोप कन्याओं ने कात्यायनी देवी की पूजा प्रारंभ की थी। पूजा की क्या विधि होनी चाहिए यह विधि भी वृंदा देवी ने उनको बता दिया था। का जो महीना आता है मार्ग शीर्ष अथवा अवहन भी उस महीना को कहा जाता है, जिस दिन कार्तिक समाप्त हुआ और अवहन के प्रथम दिन से ही उन गोप कन्याओं ने कात्यायनी देवी की पूजा प्रारंभ की थी। तो उन गोप कन्याओं का जन्म ब्रज के विभिन्न जगहों पर हुआ था। वे भोर में ही रात्रि के अंत भाग में वे एक जगह इकट्ठा नंद गांव के पास इकट्ठा होती थी और वहां से सब एक साथ मिलकर जहाँ पर हम लोग आज की रात्रि में थे रुके हुए थे यहाँ पर आती थी। नंद गांव से पैदल आती थी बालिकाएं। हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं कथा। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरुर हविष्यम भुंजानम कात्यायन अर्चनम व्रतम। कात्यायनी देवी की उन्होंने पूजा की थी। तो पहले सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वे गोप कन्याएं हैं, केवल हविष्य का भजन कर भोजन करती थी। मूंग की दाल, चावल, उसमें हल्दी डालती थी और बॉयल कर लेती थी और उसी को खाती थी प्रतिदिन के लिए। तो नंद गांव से आती थी। हम पीछे से फिर से वर्णन करते हैं कैसे कैसे आज संक्षेप में वर्णन करते हैं। यहाँ जमुना जी के तट पर आ जाती थी और आकर कालिंदी जी में जमुना जी में प्रथम काम करती थी। अपने कपड़े को जमुना जी के तट पर बालू पर रख देती थी और स्नान करती थी। स्नान करने के बाद कृपा प्रति कृतिम देवी बालू से ही भींगे हुए बालू से एक देवी जी की मूर्ति बनाती थी। कात्यायनी देवी की भींगा हुआ बालू से एक मूर्ति बना लेती थी और मूर्ति किसकी साइकृतिम मूर्ति बालू की मूर्ति बनाती थी और कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। पूजा क्या करती, गंध ही गंध अर्पित करती थी। गंध क्या होता पता है ना, क्या होता है गंध? पहले आरती होती है तो क्या होता है? अगरबत्ती। हाँ आपको पता अगरबत्ती, आप नहीं थी ना उसमें? ठीक है, अगरबत्ती पहले गंध माले माला देती थी, फूल की माला पहना देती थी उसी मूर्ति को और भी धूप दीप क्या क्या अर्पित करती थी। इसके बाद थोड़ा चावल डाल देती थी, अंकुर डाल देती थी, कोई फल लाती थी। देवी जी को सोचार विधि से पूजा करती थी। जैसे पूजा होती है देवी जी की पूजा करती थी और पूजा होने के बाद चारों तरफ से हाथ जोड़कर बैठ जाती थी। सभी छोटी छोटी बालिकाएं थी, किसी का उम्र था 4 वर्ष, किसी का 3 वर्ष, 4 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष, और एक मंत्र बोलती थी। उस पूजा का सबसे बड़ा अंग था, उपकरण था, मंत्र जप करना। मंत्र क्या है ये आप लोग सब लोग बोलिए हमारे साथ। आपका गाइड बुक है तो उसमें लिखा होगा शेरगढ़ से चीरघाट, जिस दिन लिखा होगा ना उसमें वह मंत्र लिखा होगा। आप लोग पुस्तक है तो निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़िए। कात्यायनी महामाये महाजोगेन्द्रधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी स्वतीं हे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महाजोगेन्द्रधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी स्वतीं हे कुरुते नमः। इति मंत्रम जपन पस्ता पूजाम चक्रु कुमारिका। तो पूजा में मुख्य बात यही थी, चारों तरफ बैठ कर देवी जी की मूर्ति के सामने, मूर्ति बालू से बनाती थी हाथ से, थोड़ा सा एक गर्त क्या कहते टीला बना लेती थी, छोटा सा पहाड़ी बना लेती थी, बस उसी की पूजा होती थी। और बड़ी बड़ी कारीगर नहीं थी कि मूर्ति बना देंगे उस बालू से। एवं मासम व्रतम चेरु कुमारियां कृष्ण की तपस्या, इस तरह से ब्रज की कुमारियां गोप कन्याएं एक महीने तक कृष्ण भावना भावित होकर पूजा करती रही देवी की। भद्रकालीन समान अर्जुन भूयानंद सहपति आसे हृदय में क्या बैठा था, मंत्र जप रही थी मुंह से, मस्तिष्क में स्मरण में कृष्ण रहते थे और भाव रहता था कि कृष्ण हम लोगों के पति बने। यह संक्षिप्त में होगा, लगता है कि सुखदेव गोस्वामी कथा समाप्त कर दिए, लेकिन पुनः प्रारंभ करते हैं कि अरुणोदय से पूर्व सूर्योदय होता है, सूर्योदय से पूर्व आकाश में जो लालिमा छाती है तो उसमें अरुणोदय काल कहते हैं, लगभग 45 मिनट एक घंटे पहले होता है। तो उसके भी पूर्व तो गोप कन्याएं जग जाती थी, उनको रात्रि में नींद नहीं आती थी, निद्रा देवी भी भय से उनके यहाँ नहीं आती थी कि कहीं उनको लेट हो जाएगा निद्रा देवी के कारण, तो निद्रा देवी को भगवान डांटेंगे कि तुमने उन लोगों को तंद्रा दे दिया, सो गई, पूजा के लिए नहीं पहुंच पाई। तो निद्रा देवी सब जाती ही नहीं थी, 12-1 बजे पहले ही गायब हो जाती थी। गोप कुमारियां जग जाती थी और नाम लेकर एक दूसरे को पुकारती थी, हजार हजार की उनकी बहुत भारी संख्या थी, एक दूसरे का नाम ले रही थी कि पूजा का समय होगा आ जाओ आ जाओ। और वहां से एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आती थी, छोटी छोटी बालिकाएं थी, गोप कुमारियां थी, गोप कन्याएं थी, तो हाथ पकड़ के गिरने का भय था, अपना रात्रि के समय भय लग रहा होगा। नंदगांव 7-8 दिन पहले थे ना, आप 7-8 दिन में जितनी दूरी तय कर रहे हैं उतना दूरी चल कर आती थी। यहाँ पर लिखा है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आती थी और उच्च स्वर से भगवान की लीला का, कृष्ण की लीला का दान करती थी और आ जाती थी तो कालिंदी के तट पर आती थी, अपने जो वस्त्र पहन कर आती थी पूरा वस्त्र को खोल कर जमुना जी के बालू पर तट पर रख देती थी और स्नान करती थी। ज्यादा उनकी गोप बालिकाएं भी ज्यादा कपड़ा नहीं था, समय पहले उनके पास साड़ी है तो क्या है, घर की स्त्रियां थी बालिकाएं थी तो सभी कपड़े रख देती थी और पूर्णतः नग्न होकर जमुना पुनः स्नान करती थी और स्नान करने के बाद पुनः क्या करती थी, कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती थी बालू का जैसा हमने बताया, और पुनः 1600 प्रचार से कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। रोज रोज का तो रखा था, अंतिम दिन जिस अंतिम दिन पूजा करना था, पूर्णिमा की तिथि थी, अब यह शरद पूर्णिमा है, इसके कार्तिक पूर्णिमा है नेक्स्ट पूर्णिमा को, तो चूंकि व्रत की उस दिन पूरा होती थी, कात्यायनी देवी की पूजा उन गोपियों ने किया था जो गोपियां पूर्व जन्म में दंडकारण्य की ऋषि मुनि थी और उनका उम्र बहुत कम था, परंतु उस दिन उन लोगों ने अंतिम दिन, उनको पता था कि आज अंतिम दिन है पूजा का, कात्यायनी देवी की पूजा करना है, तो उन लोगों ने सबको इनवाइट किया था। अंतिम दिन जिस दिन क्षीर हरण हुआ था उस दिन सभी गोपियां थी, उस दिन श्रीमती राधा रानी थी, ललिता थी, विशाखा थी, पद्मा थी, श्यामा सत्या, जितना आप लोग नाम जानते हैं उस दिन सभी गोपियां आई थी गेस्ट रूप से। पूजा तो दंडकारण्य के जो ऋषि थे, जो गोप कन्याए बने थे, वो लोग आई थी, लेकिन गेस्ट रूप से ब्रज की समस्त गोपियां आप उपस्थित थी और सबों ने ऐसा ही किया। तट पर आई और आने के बाद वे कपड़ा तट पर रख दी और नग्न होकर स्नान करने लगी। उसी समय भगवान प्रभात काल में ही जैसे तैसे अपने गोप सखाओं से नजर बचाकर उन पर आ गए। भगवान के साथ वर्णन किया गया है कि चार और सखाए थे, कुल मिलकर पांच लोग आए थे। भगवान अकेले नहीं आए थे। अकेले क्यों नहीं आए थे? इतना ज्यादा कपड़ा था, अकेले कितना उठाते? और चार बुलाए थे, उनको लेकर पांच थे। दाम सुदाम वसुदाम और किंकणी, ये सबका उम्र 4 वर्ष के अवस्था था। उनके मित्र थे, भगवान के थे। दाम सुदाम वसुदाम और किंकणी, यह नाम था। चार सखाए थे। तो गोपियां क्या कर रही थी? यमुना जी में स्नान कर रही थी। भगवान जब तट पर आए तो गोपियों को देखा तो गोपियों का मुंह इतना सुंदर था, ऐसा लग रहा था कि यमुना जी में चारों तरफ कमल के पुष्प खिले हुए हैं। गोपियों का इतना सुंदर और तो शरीर तो पानी के अंदर था, जब मुंह दिखाई पड़ता था तो चारों तरफ ऐसा लग रहा था खूब बढ़िया कमल के पुष्प खिले हुए हैं। भगवान वहां आ गए और आने के बाद भगवान को यह पता था, पहले से भगवान जान गए थे कि गोपियां मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, भजन कर रही हैं, भक्ति कर रही हैं, कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं। इसलिए भगवान उनके भगवान तद अभिप्रेत्यम उनका क्या अभीष्ट था, उनकी क्या इच्छा थी, यह जान गए थे, इसलिए भगवान वहां आए। आप लोग जानते हैं प्राय क्या होता है कि जिस देवता अथवा देवी की पूजा की जाती है तो पूर्णाहुति के समय वही देवी प्रकट होते हैं। आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी नहीं आते हैं? तो यहाँ तो पूजा हो रही थी दुर्गा जी की, भद्रकाली की, कात्यायनी देवी की। आना चाहिए था किसको? देवी जी को प्रकट होना चाहिए था, लेकिन देवी जी प्रकट नहीं हुई। देवी जी जानती थी, कात्यायनी देवी जानती थी कि गोपियों का महत्व, भगवान के बहुत ज्यादा भक्त है, हमारा तो हम लोगों का मेरा तो कोई गणना ही नहीं उसमें, और मैं उन गोपियों को आशीर्वाद देने के योग्य नहीं हूँ, मुझे तो उनकी चरण धूलि हमें ही ग्रहण करना चाहिए। तो लज्जा बस कात्यायनी देवी वहां पर उपस्थित नहीं हुई, भगवान प्रकट हुए। वास्तविक बात यह थी कि बाह्य रूप से तो पूजा हो रही थी कात्यायनी देवी की, लेकिन वास्तविक पूजा गोपियां कृष्ण की कर रही थी, इसीलिए भगवान वहां आ गए। और भगवान आए तो पहले गोपियों को देखे, उनके मुख यमुना जी के चारों तरफ जंगल पानी में स्नान कर रही थी, मुंह उनका ऊपर था, पद्म पुष्प के समान सुंदर उनका चेहरा दिखाई पड़ रहा था। इसके बाद भगवान ने अपने सखाओं को, चार सखाओं को खूब जल्दी जल्दी जितना कपड़ा था उसे उठा लिए। उनके संपूर्ण वस्त्र को एक भी छोटा सा भी टुकड़ा भी बालू पर नहीं छोड़ा भगवान। पांच लोग थे, जल्दी जल्दी सारा कपड़ा लेकर वहां पर निप कदम का वृक्ष था उस पर चढ़ गए, उस पर विभिन्न जगहों पर कपड़ा को टांग दिया। ये सब कृत हो रहा था लेकिन गोपियों को कुछ पता नहीं था। भगवान की लीला का दान कर रही थी, भगवान का चिंतन कर रही थी और यमुना जी में विहार कर रही थी, स्नान कर रही थी। उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए भगवान ने गोप सखाओं से कहा कि तुम लोग जोर से हंसो। खुद हंसने लगे और गोप सखाओं को कहा कि जोर से आवाज करो, हंसो। तो सभी पांच लोग कृष्ण और चार सखा जोर से हास्य किए। हाथ हंसने लगे तो गोपियों को उनका ध्यान आकर्षित हुआ, सुनी तो सुनने के बाद प्रथम उनका ध्यान कहाँ गया? यमुना जी के तट पर, जहाँ पर उन लोगों ने कपड़े रख दिए। वहां पर यमुना जी के तट पर उन्होंने देखा तो एक भी वस्त्र वहां नहीं थे, गोपियों को तो बहुत चिंता हुई, आवाज तो आ रही थी, भगवान को अभी नहीं देखी थी, आवाज तो हंस तो सुनाई पड़ रहा था, लेकिन कपड़े के तौर यमुना जी के बालू पर देखा तो एक भी कपड़ा नहीं है। बालक भगवान को थोड़ा धीरे धीरे भी हंस रहे थे, तो बच्चे थे उनको सिखा दिया था, तुम खूब जोर से हंसो, बार बार हंसो। तब गोपियों ने प्रार्थना फिर देखी तो भगवान वहां है, उनके चार सखा हैं, सारे कपड़े लेकर ऊपर चढ़ गए हैं भगवान। भगवान भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया गोपियों ने कि कपड़े हम लोगों को, जो आपने हमारा कपड़ा चुरा लिया है, ले लिया है, उसको दे दीजिए। पानी से बाहर से निकाल करना है, इतना कौन सा बोल सकती थी, शरीर तो नीचे पानी था, पानी में था, उन्होंने कहा कि हमारे कपड़े आप दे दीजिए। भगवान ने कहा कि मैं आप लोगों का कपड़ा पहचान नहीं रहा हूँ, किसका कौन कपड़ा है, किसका साड़ी कौन है, इसीलिए अस्त्रा बक्ष अबला कामम शोषम वा संपत्ति देता, आप लोग नजदीक आइए, एक एक करके झुंड में नहीं आना है, आप लोग यहाँ आइए और मैं आप लोगों को कपड़ा दूंगा, आपको बताना होगा कि आपका कपड़ा कौन है, शोषम वा संपत्ति, अपनी अपनी साड़ी आप लोग ले लीजिए, मैं तो पहचानता नहीं किसका, मैं किसको दूंगा, इसीलिए आप लोग खुद यहाँ आओ और आकर अपना अपना कपड़ा हमसे ले लीजिए। सत्यम ब्रह्मांड भगवान कहते हैं कि मैं तो गोपियों ने ऐसे कहा होगा कि आप हम लोग आ जाएंगे, शायद आप नहीं देंगे, तब हम लोग क्या करेंगे। गोपाल जी थोड़ा इसे ध्यान से रखिएगा, नहीं तो गिरेगा तो कहेगा पीठ टूट जाएगा। तो सत्यम गुरुवाणी भगवान कहते हैं कि मैं एकदम सत्य बोल रहा हूँ, मैं स्वप्न में भी किसी से अब तक झूठ नहीं बोला, झूठ बोलने का तो, और मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हंसी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे भी मैं किसी से झूठ नहीं बोलता हूँ। आप लोग तो साधु ही हो, भजन की हो, भक्ति की हो, दूसरे लोग से झूठ बोलते हैं, साधु महात्मा से झूठ नहीं बोलते हैं, आप लोग ने भजन किया है, आज तो आप लोगों से झूठ बोलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, मैं एकदम सत्य कहता हूँ, मैं परिहास नहीं करता हूँ, और आप लोग व्रत से कर्षित हैं, महीने भर व्रत किया है, इसीलिए मैं आपसे झूठ झूठ नहीं बोल सकता हूँ, आप लोग आइए और अपना अपना व्रत ले लो। न मयो मया उदितम पूर्वम वा अमृतम पर्यन्त, भगवान कहते हैं आप लोग जान जे आज से पहले मैं कभी भी झूठ नहीं बोला। तो गोपियां थोड़ा सा साहस की कि निकल कर एक साथ झुंड में, एक साथ घेरा में, भगवान कहना ऐसे नहीं आना, भगवान ने कहा एक ही कसर, एक एक आदमी को आना है, और सब जल में ही रहे, जल से एक गोपी निकलेगी, यहाँ को बताएगी कि यह साड़ी उनका है, वह साड़ी मैं उठाऊंगा दूंगा, वो चली पहन लेगी, तब दूसरे को आना है, एक झुंड में नहीं आना है। गोपियां तत् खेलितम दृष्टवा गोपी और प्रेम परिस्थिता है, देखिए भगवान गोपियों का अधिकार है, भगवान इतना तंग कर रहे थे, लेकिन भगवान की यह वाणी सुनकर कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम था और बढ़ गया, प्रेम से उनका एक वन्य बाण आ गया उनके हृदय में और उनके कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ गया। प्रीता पेट जब हासन ये हंस रही थी, एक लज्जा आ रही थी कि अब पूर्ण रूप से नग्न होकर हम उतरे, अपने एक स्त्री का अधिकार होता है कि अपने पति के सामने नग्न हो सकती है, लेकिन पति के अतिरिक्त किसी दूसरे के सामने नग्न होकर जाना तो उनको बहुत उनको दुख हो रहा था, उनको लज्जा आ रही थी, तो निकली नहीं। तो इसके बाद गोपियों ने गोपियां अंगुल के जमुना जी के जल के अंदर था, केवल मुंह ऊपर था, उन लोगों ने कहा उनसे मान अयम भो कृतास्वान तू नंद गोप सुतम प्रियम। गोपियों ने आग्रह किया कि आप हम लोगों के राजा नंद बाबा राजा हैं, गोप के उनके पुत्र हैं, आप राजकुमार हैं, तो नंद बाबा जैसे सुशील व्यक्ति का पुत्र होकर सभ्य व्यक्ति का पुत्र है, ऐसी असभ्यता ऐसा अन्याय हम लोग स्त्रियों के प्रति आपको नहीं करना चाहिए। ब्रज में आप लोग, आपकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं, माँ यशोदा के पुत्र हैं, इसलिए इस तरह का कृत्य, इस तरह का अन्याय आपको नहीं करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त हम लोगों को ठंडा लग रहा है, हमको शीत लग रहा है, आप हम लोगों के कपड़े आप दे दीजिए। फिर गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण श्याम सुंदर ते दास्यम, हम आपकी दासियां हैं, यदि आप कपड़ा हम लोगों को दे देंगे, आप जो कहेंगे हम लोग करेंगे, हम आपकी बेमोल की बिकी हुई दासियां हैं, वो तो सरेंडर आपके शरण में है, इसलिए हम लोगों से ऐसा अन्याय मत कीजिए, हम लोगों को ऐसा दुख मत दीजिए, आप हम आपकी सेविकाएं हैं, जो आप कहेंगे हम लोग करने को सब तैयार हैं। भगवान कहे कि नहीं, देने का तो प्रश्न है, मैं देने दे, दे, दूंगा तो जरूर, आपको एक एक करके आना होगा। तो गोपियों ने कहा कि देखिए आप ऐसा करेंगे, देही भाषाओं से सर्वधर्मज्ञ, आप धर्म के रहस्य को जानते हैं, किसी व्यक्ति को दुख नहीं देना चाहिए, पिछले गाय को, बच्चे को, स्त्री को दुख नहीं देना चाहिए, धर्म को आप जानते हैं, धर्मज्ञ हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया, हमारे कपड़े आप नहीं देंगे, तो हम लोग नंद बाबा से अथवा संपूर्ण इस क्षेत्र का जो राजा है कंस उसे कह देंगे। पहले तो कहा कि हम आपकी सेविकाएं हैं, जो कहेंगे मैं हम लोग करने को तैयार है, और फिर कंप्लेन क्या करती हैं, यदि आप हमारे पक्ष नहीं देंगे तो क्या मैं हम लोग करेंगे। दो राजा हैं, ब्रज के तो राजा नंद बाबा है, लेकिन पूरे देश के राजा कौन है, कंस है, उसे जाकर शिकायत कर दें। भगवान ने कहा ठीक है आप लोग जाओ कंस के पास, मथुरा आस पास नंदगांव जाकर हमें कोई मतलब, धमकी दे रही हो तुम, ना तो जाओ तो कैसे जा सकते थे, अब तो सूर्योदय होने वाला था, एकदम नग्न रूप से मथुरा जाएंगे कि नंदगांव जाएंगे, कैसे जाएंगे, रास्ते में कैसे जाना होगा। तो गोपियों ने समझ लिया एकदम सीरियस बात है, उन्होंने गलती किया, कह दिया कि हम लोग राजा से बता दें, अरे यही हमने भी नहीं करना है, नहीं तो नहीं देखे कहे तो छुन लेकर भाग जाएंगे नंदगांव से, तब क्या करें। भगवान ने यह कहा कि एक बार तो आप लोग कहती हो कि आप जो कहेंगे हम लोग करेंगे, और मैं कहता हूँ कि एक एक करके वस्त्र लेकर आ जाइए, तो आप लोग तो प्रतिकार कर रही हो, एक बार कहती हो कि आप दासियां हैं, सेविकाएं हैं, और मैं सेवा बता रहा हूँ तो उसमें विपरीत काम कर रही हूँ, आप लोग कर रही हो। राजा के पास जाना है जाइए, नंद बाबा के पास जाना है जाइए, नंद बाबा पिताजी तो हमसे इतना प्रेम करते हैं, आप लाख बार शिकायत करके देख लीजिए, हमारा कुछ नहीं करें, हमको नहीं पूछेंगे, हमसे प्रेम करते हैं, आप लोगों से ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा कि यदि आप लोग सचमुच सीरियस हो, सचमुच आपको ठंडा लग रहा है और भय है, तो एकदम ऐसे ही आना होगा, एक एक करके आना होगा और वस्त्र लेना होगा, और नहीं तो जो कुछ करना होगा, मैं भी ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं हूँ, मैं वस्त्र ले देकर चला जाऊंगा। तो भगवान ने ऐसे कहा तो सभी गोपियां एक साथ जमुना जी से निकली, फिर भगवान ने कहा एक एक आना है, लेकिन वो ऐसे उन्होंने एक साथ निकली, और एक साथ निकली तो उनके इतने बड़े बड़े सुंदर बाल थे, तो बाल को चारों से ढक लिया अपने शरीर को, गोपियां बाल था ना बहुत बड़े बड़े बाल थे, तो पूरा नीचे तक ढक लिया, कंबल जैसा ओढ़ लिया अपने बालों से, और जैसे तैसे अपने विशेष विशिष्ट अंगों को छिपाते हुए आई। और भी लिखा हो गया अपने विशिष्ट अंगों को कुछ तो बाल से कुछ हाथ से छिपा कर आ रहे थे। भगवान को बहुत प्रसन्नता हुई, भगवान ने कहा कि ना ऐसे न, अरे अपराध हुआ है, अपमान हुआ है, इसीलिए पहले आप लोग दोनों हाथ जोड़ लो, जो हाथ से अपने अंगों को विशेषों को छिपाए जैसे नहीं, दोनों हाथ जोड़ लो। जोड़ लिया और देवता तो ऊपर रहते हैं तो ऊपर हाथ देवता को पहले प्रणाम करो, तो वैसा गुटियों को करना ही, पर नहीं करने का मतलब भाई भी विष्ट लेना था, कहीं कपड़ा लेकर चले जाए तब क्या करेंगे। तो भगवान जैसा जैसा किए, भगवान ने कहा कि हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ लिया। देवता ऊपर रहते हैं ना, वरुण देव ऊपर ऊपर देवता को भगवान कहते हैं, भगवान ऊपर है तो ऊपर ऐसे गोपियों ऐसा की। और इसके बाद भगवान एक एक गोपियों को वस्त्र दिए थे, तो रेष्ठ भाग हम लोग जो बाद में क्या हुआ, वस्त्र तो मिल गया, बात पहनने में देरी लगा हूँ तो ले गया, तो महाराज जी से हम प्रार्थना करेंगे समय से महाराज आए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। भांडीर वन के भांडीर वट वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं, हम लोगों को उचित पात्र मिल गए, व्यक्ति जो भगवान की इस लीला को बढ़िया से अनुभव करते। हमारे पास समय है, छाया है और महाराज है, और भगवान का राधा कृष्ण।